फिर उसके बाद देखिए, शौहर बीवी के ताल्लुक के लिए इतना खूबसूरत जुमला है कि दुनिया का कोई फिक्शन, कोई फिल्म, कोई नॉवल, कोई डाइजेस्ट इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और वो क्या, वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम के लिए। जिस्म और लिबास का ताल्लुक क्या होता है? एक दूसरे के ऐप को छुपाते हैं। हमारे जिस्म पे कोई ऐप होगा तो लिबास हमारा छुपाएगा। इसी तरह शौहर और बीवी को एक दूसरे के हमराज होना चाहिए। हर इंसान के अंदर कुछ शॉर्टकमिंग्स भी होती हैं, कमियां भी होती हैं। बीवियों को शौहरों के और शौहरों को बीवियों के ऐप नहीं बताने चाहिए। फिर इसी तरह देखिए कि लिबास और जिस्म बराबर होता है। हम अपने से छोटे कपड़े पहने तो हम कंफर्टेबल नहीं होंगे। इसी तरह जब रिश्ते देखें तो कफ देखिए, बराबरी का ताल्लुक होना चाहिए, हम मिजाज होने चाहिए। फिर इसी तरह आप देखिए कि लिबास पहनकर इंसान खूबसूरत लगता है। बेलिबास इंसान क्या है? गोश्त का पहाड़ है। इसी तरह शादीशुदा इंसान खूबसूरत लगता है। शौहर और बीवी को लिबास और जिस्म की तरह साथ रहना चाहिए, बिला वजह एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहिए। बार दफा कमाई के लिए और बार दफा और मजबूरियों की खातिर कई कई साल तक दूरियां होती हैं। और इस पे और भी बहुत कुछ हम गौर व फिक्र करते होते हैं, लेकिन इसको सुनते वक्त अल्लाह का दिल की गहराई से शुक्र अदा करें कि उसने निकाह जैसा बंधन ऐसे रखा कि जिसके साथ फिर इंसान इस तरह बन जाता है कि दुनिया का हर रिश्ता पीछे हो जाता है। इसके बरक्स अगर आप दूसरों को देखिए, लिविंग टुगेदर, दिल आज खुश है कल खुश नहीं है, और आज इस तरफ से और आज उधर से, और इस तरह से आज वेस्ट ने औरत को किस तरह कठपुतली बना दिया। अल्लाह ताला हमें इस्लाम की कदर की तौफीक दे। फरमाए कि अल्लाह को मालूम हो गया है क्या कि तुम चुपके चुपके अपने आप से खयानत कर रहे थे, मगर इसने तुम्हारा कसूर माफ कर दिया और तुमसे दरगुजर फरमाया। अब तुम अपनी बीवियों के साथ शबाशी करो और जो लुत्फ अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज कर दिए इसको हासिल करो। नीस रातों को खाओ पियो, यहां तक कि तुमको स्याही शब की धारी से सुबह सुबह की धारी नुमाया नजर आने लगे। सुम्मातिमुस्सियामैलल्लैल, ये है रोजे का औकात। पूरे कुरान में रोजा कब से कब तक रखना है, आधा जुमला है। सुम्मातिमुस्सियामैलल्लैल, तब ये सब काम छोड़कर रात तक अपना रोजा पूरा करो। आप कहेंगे हम रात तक तो नहीं करते, हम तो मगरिब तक करते हैं। तो अरबी जुबान में रात का आगाज मगरिब की नमाज से हो जाता है। वला तुबाशिरूहुन्ना वअन्तुम आकिफून, और जब तुम मस्जिदों में इतिकाफ की हालत में हो तो अपनी बीवियों से ताल्लुक कायम न करो। ये अल्लाह की बांधी हुई हदें हैं, इनके करीब न पटकना। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तकून, इस तरह अल्लाह ताला अपने काम लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है। तवक्को है कि वो गलत रवैये से बचेंगे। और तुम लोग ना तो आपस में एक दूसरे के माल ना रवा तरीके से खाओ और ना हाकिमों के आगे ले जाओ, इस गरज से कि तुम्हें दूसरों के माल का कुछ हिस्सा इरादे के साथ जुल्म के तरीके से खाने का मौका मिल जाए। नोट किया आपने? रोजे की आयतों के फौरन बाद रिश्वत और माले नाहक की बात क्यों आई? ये है रोजे का मकसद। रोजा हमें एक जिम्मेदार इंसान बनाता है। रोजा ये सिखाता है कि एक महीना तुमने अल्लाह के कहने पे हलाल को छोड़ा है, अब 11 महीने हराम को छोड़ना है। रोजे का एक असर हर इंसान को अपने ऊपर महसूस करना चाहिए कि नाफरमानियां और नाजायज चीजें उसकी जिंदगी से निकल जाएं और उसकी जगह पे अल्लाह की रजा आ जाए। इसके बाद एक और सवाल था सहाबा का कि चांद क्या है? अब आ जाए तो आप तो फौरन बता देंगे चांद उधर है, इतनी दूर है, इतना बड़ा है, उधर गैस नहीं, उधर पानी नहीं, साइंस ने तरक्की की और हमने ऐसी तस्वीरें भी खींच ली। सहाबा को नहीं पता था उस वक्त जो चीज वो नहीं देखते, फिर अल्लाह के नबी से इस ख्याल से पूछते थे कि ये क्या हो रहा है, कभी बड़ा चांद है कभी छोटा है। अल्लाह ताला ने उसकी भी बात कुरान में खोल दी। क्या? यसलूनक अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाकीतु लिन्नासि वल हज, लोग तुमसे चांद की घटती बढ़ती सूरतों के बारे में पूछते हैं, कहो ये लोगों के लिए तारीखों का तायुन है और हज की अलामतें हैं। नीज इनसे कहो कि ये कोई नेकी नहीं कि तुम अपने घरों में इन पीछे की तरफ से दाखिल होते हो, नेकी तो असल में उस शख्स की है जो अल्लाह की नाराजगी से बचे। बस तुम अपने घरों में दरवाजों से आया करो, अलबत्त अल्लाह से डरते रहो, शायद तुम्हें फलाह नसीब हो। अरब लोग जब एहराम बांध लेते थे हज या उमरे का, एक दफा जब घर से निकल जाते बिलफर्ज कोई चीज याद आती, जैसा अमूमन आप लोगों को देखते हैं ना, घर से निकलते ना 4 दफा वापस आते हैं, ओ भूल गई, ओ बच्चे ही भूल गई, और ये घर रह गया, वो रह गया, अच्छा भाई आ जाओ सीधा, कहते थे ना ना। दो वजूहत थी, एक तो कहते थे कि उम्रे की नीयत से निकले थे तो बगैर उम्रा किए अंदर जा रहे हैं, खाम खा तकवा का एक अजीब सा अंदाज, और दूसरा वो क्या सोचते थे कि ये बदशगुनी होगी, फिर जाना तो पड़ता मजबूरी, तो सीधे दरवाजे से जाने के लिए पीछे से जाके छत के रास्ते कूद के आते थे। اللہ نے منع کیا کہ مسلمانوں ڈھنگ کے کام کرو. اصل میں اس میں بھی امت مسلمہ کے لیے ایک بہت سبق ہے. بعض دفعہ ہم جذبات میں آ کر ریئیکشن میں دکھانے کے لیے یا اپنے آپ کو بہت بڑا کرنے کے لیے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں. کبھی بھی اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہیے, سیدھے کام کرو, ڈھنگ کے کام کرو. دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم دوسروں کی نظروں میں تماشا بن جائیں اور مذاق بن جائیں. لہٰذا اسی طرح سے فرمایا کہ نیکی کے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچو تو کاموں کو ٹھیک طریقے سے کرنا عقل مندی کی علامت ہے. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں, ہاں مگر زیادتی نہ کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہ کچھ آیات قتال کے بارے میں. آج اسلام پر ایک بہت بڑا الزام ہے اور اسلام کو ٹیررزم کا نام دیا جاتا ہے. آپ یہ ساری آیات سنیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنے دل سے بھی پوچھئے کہ کیا اسلام جو دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں کیا سکھا رہا ہے, زیادتی نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک کسی کافر کو جواب نہیں دیا ظلم اور بربریت کا. یہ کہتے رہے کف و ایدیکم, کیونکہ ابھی ہم تھوڑے ہیں, ابھی ہماری وہ طاقت نہیں ہے. مدینہ میں چلے گئے, 1 سال تک کچھ نہیں ہوا. غزوہ بدر کی چھیڑ خانی شروع ہوئی, اس کے بعد حکم مل گیا یا اس کے قریب ملا, یعنی مدینہ میں جا کر پہلی دفعہ وہ اجازت ملی. وہ اذن للذین یقاتلون, جس صورت حج میں ہم پڑھیں گے. کیا پتہ چلا کہ ہمارا دین جنگ و جدل والا دین نہیں ہے. لیکن جب کوئی آپ کو مارنے آئے تو آپ کیا کریں گے؟ مار لو پھر, چلو ترن والا کھا لو. کیا دنیا میں کبھی آپ نے کوئی کمانڈر ایسا دیکھا کہ اپنے فوجیوں سے کہ خبردار دشمن کو مارا, دیکھو ان کا خون نکلے گا تو ڈیٹول لے کے جانا, پٹی باندھنا اور ان کو ڈاکٹر پہ لے جانا. ڈز اٹ میک اینی سینس؟ جب اپنی دنیا میں یہ بات سمجھ نہیں آتی تو اسلام اگر اپنا دفاع کرتا ہے یا اگر کوئی اس کو آنکھیں دکھائے تو وہ اس کو آگے سے پوچھے بھائی کیا ارادہ ہے, تو کیا یہ بری بات ہے؟ یاد رکھیے, سر اٹھا کے جینا سیکھیں. جب تک ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ اسلام پیس کا دین ہے, اسلام ریلیجن کیسا ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ لڑنا کٹنا نہیں سکھاتا بلکہ ان کے ساتھ معاملہ فہمی سکھاتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام پھیلایا وہ تلوار سے نہیں پھیلایا تھا بلکہ آپ نے اخلاق کے ساتھ بات کی تھی. تو کبھی بھی اس طرح کے کام کر کے دوسروں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ آپ لاجیکلی بات کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے زیادتی نہ کرو. عورتوں پہ ہاتھ اسلام نہیں اٹھانے دیتا, بچوں پہ نہیں اٹھانے دیتا, بوڑھوں پہ نہیں اٹھانے دیتا, گرجا گھروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے عبادت کریں ان کو نہیں اٹھانے دیتا. صرف جو فوجی اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے آگے, اب ان کو کیا کرو؟ دیکھیے ایک مچھر بھی مارے یا کاکروچ کو مارے تو وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے نا, تو کیا مسلمان کے آؤ تو مجھے مار لو؟ تو یہ ون سائڈڈ قسم کے رول سے دنیا میں کبھی بھی امن نہیں آتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے, اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے. اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا. یعنی مکہ والوں کا اپنے کام بھول گئے کہ ان کی زیادتیوں سے ایک نبی ملک چھوڑنے پہ یا ان کا شہر چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا, اور یہ آج چھوٹی چھوٹی باتوں کو فتنہ بناتے ہیں. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو, مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکے تو تم بھی بے تکلف ان کو مارو. کیسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ. یہ آیت 193 ہائی لائٹ کیجیے. اسلام کا نظریہ جہاد بڑے خوبصورت طریقے سے اس آیت سے سمجھ آتا ہے. تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا کسی اور پر ہاتھ اٹھانا پسندیدہ نہیں. دیکھیں یہاں فتنے کی بات ہے. کسی بھی جگہ لڑائی کرنا کب لازم ہو جاتا ہے؟ نمبر ایک, وہاں پرسیکویشن ہو. فتنہ کیا ہے؟ لوگوں کو اسلام پر عمل کرنے سے روکا جائے. کوئی ایسا ظالم حکمران آ جاتا ہے کہ مسلمانوں کو مرواتے, جیسے سورہ بروج میں آپ پڑھیں گے, یعنی آگ کی ڈچز کھود کے اس میں مسلمانوں کو جلایا. ایسے وقت میں بھی مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ اپنی جان بچائیں. اسی طرح دوسری صورت کیا ہے کہ جب کوئی دشمن لا الہ الا اللہ پڑھنے سے روک لے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ جب کوئی مسلمانوں کو ان کے دین پہ عمل نہ کرنے دے تو آپ مقابلہ کریں گے. وَيَقُونَ دِينُ لِلَّهِ. یہ دوسری وجہ کہ ساری دنیا میں جب تک لا الہ الا اللہ کے جھنڈے نہ لگ جائیں. تھوڑی سی بات سمجھ لیں, کسی بھی ملک میں آپ جاتے ہیں تو وہاں اسی ملک کے جھنڈے ہوتے ہیں نا. چھوٹا سے چھوٹا ملک دنیا کا شاید برونائی ہوگا, اس کا بھی اپنا جھنڈا ہے. اب اوور آل یہ پوری دنیا کس کی ہے؟ للہ ما فی السماوات. تو پوری دنیا پہ کس کے نام کا جھنڈا ہو؟ یہ ہے یکون الدین للہ. इस किली अमन के साथ। और जब लोग दावा देते हैं, जब लोग दीन को आम करते हैं, तो तलवारों के साथ झंडे उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए फरमाया फाइन तखाउफ अला उदवान इल्ला अल जालिमीन, फिर अगर वो बाज आ जाए तो समझ लो कि जालिमों के सिवा किसी पर हाथ उठाना जरूरी नहीं, यानी इस मुसलमान बेगुनाह शहरियों को नहीं मारता। आज इसके बरक्स देखिए जरा जो जंगों के तरीके हैं, बच्चे स्कूलों में गए हैं, पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं, औरतें बच्चे बूढ़े सब इसका शिकार होते हैं। वजह क्या है कि आज वो मैनर्स ही नहीं है जंगों के। पहले दौर में जंगें जब लड़ी जाती थी तो मैनर्स होते थे, आज तो अल्लाह माफ करे कि ऐसी जंगें हैं कि जिसमें घरों में बैठे लोग भी उतने ही इनसिक्योर हैं जितने जंगों पे गए हुए हैं। तो लिहाजा इस्लाम का नजरिया अगर आप पढ़ के देखें तो आपको उसमें सरासर इंसाफ दिखेगा। अशहरुल हराम बिशहरिल हरामी वल हुरुमातु क़िसास, माहे हराम का बदला माहे हराम ही है और तमाम हुरमतों का लिहाज बराबरी के साथ होगा। बस जो तुम पर हाथ उठाए तो तुम भी उस पर हाथ उठाओ, अल्बत्ता अल्लाह से डरते रहो और ये जान रखो कि अल्लाह इन्हीं लोगों के साथ है जो इसकी हदूद को तोड़ने से परहेज करते हैं। नोट करें, अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। यहाँ एक बात नोट कीजिए कि जो रब दुश्मनों पे ज्यादती करने को पसंद नहीं फरमा रहा, क्या वो अपनों पे, प्यारों पे, रिश्तेदारों पे ज्यादती करने को पसंद करेगा? बाज़ दफ़ा आप देखिए कि खून के रिश्ते एक दूसरे के दुश्मन है, सास बहू का रिश्ता तो वैसे ही बदनाम है, तो कभी किसी पे ज्यादती ना करें। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का एक कॉल याद आ गया, कहते हैं कि क्यामत के दिन मैं मजलूम बन के आऊं, यानी किसी ने मेरे पे जुल्म किया, मुझे ये पसंद है लेकिन ये मैं गवारा नहीं कर सकता कि मैं जालिम बन कर आऊं। तो कभी कोई आप पे ज्यादती करें तो कहें अल्लाह तेरा शुक्र है मैं ज्यादती करने वालों में तो नहीं हूं, सहने वालों में हूं, अल्लाह ताला तो इनको भी हिदायत दे दे। अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों अपने आप को हलाकत में ना डालो, एहसान का तरीका इख्तियार करो कि अल्लाह मुहसिनों को पसंद करता है। इस आयत में क्या मैसेज है? जब मुसलमान अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से हाथ रोक लेते हैं वो हलाक हो जाते हैं। दुश्मनों को पता चल जाता है ये एक एक शादी पे लाखों करोड़ों लगा देंगे, लेकिन अल्लाह के नाम पर ये चंद सौ भी नहीं लगा सकते। अमूमी तौर पर याद रखिए, जब लोगों के दिल में अल्लाह की कदर कम हो जाती है ना, तो अल्लाह के दीन की भी कम हो जाती है। दुनियावी जरूरियात, शौक और ख्वाहिशात पूरा करने के लिए हजारों लगाएंगे, और दीन के नाम पर, दीन की नशरो इशात के लिए या अपनी ही जात पे कुछ लगाना पड़े तो सबसे ज्यादा उस वक्त इंसान को ख्याल आता है कि इतना लेने की जरूरत क्या है। तो जब मुसलमान खर्च नहीं करेंगे, आज क्या हो रहा है आपको पता है कि मुसलमान इस्लाम में 2.5% माल पे जकात देते हैं, अपने माल पे 2.5% जकात देते हैं। हालांकि आप देखिए कि गैर मुस्लिम 25% अपने माल का चर्चिस को देते हैं। तो लिहाजा अपनी जात पे खर्च करते वक्त इंसान देखे कि मैं अल्लाह के दीन पर भी इसी तरह खुशी से खर्च कर सकता हूँ। अल्लाह की खुशनुदी के लिए जब हज और उम्रे की नीयत करो तो इसे पूरा करो, और अगर कहीं घिर जाओ तो जो कुर्बानी मुयस्सर आए अल्लाह की जनाब में पेश करो, और अपने सर न मूंडो जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह पे न पहुंच जाए। फमन कान मिनकुम मरीदन, मगर जो शख्स मरीज हो या जिसके सर में कोई तकलीफ हो और इस बिना पर अपना सर मुंडवा ले, तो इसे चाहिए कि फिदिये के तौर पर रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर अगर तुम्हें अमन नसीब हो जाए और तुम हज से पहले मक्का पहुंच जाओ, तो जो शख्स तुम में से हज का जमाना आने तक उम्रे का फायदा उठाए वो हसब मकदूर कुर्बानी दे, और अगर कुर्बानी मुयसर ना हो तो 3 रोजे हज के जमाने में और 7 घर पहुंच कर इसी तरह पूरे 10 रोजे रख ले। ये रियायत इन लोगों के लिए जिनके घर बार मस्जिद हराम के करीब ना हो। आप देख रहे हैं कि ये हज और उम्रे के कुछ मसाइल हैं जो इस वक्त तो हमें जरूरत नहीं है, जब भी कभी जाना हो। इस पर एक बहुत ही खूबसूरत किताब इकबाल केलानी साहब की, हज और उम्रे के मसाइल, बहुत डिटेल से सारे मसाइल मौजूद हैं। आप वो बुक साथ रख लें, उसको पढ़ लें या उसकी ऑडियो सुन लें, इंशाल्लाह ये सारे मसाइल आपको वहां समझ आ जाएंगे। फिर फरमाए वत्तकुल्लाह वालम अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, हम की खिलाफ वर्जी से बचो और खूब जान लो कि अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है।